नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 1 बजे तक 36.93% मतदान रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार में आई तेजी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोनीपत जिले के गोहना में जनसभा की। मेक इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हुए प्रधानमंत्री ने इस योजना की सराहना करते हुए हर संभव माध्यम से इस पहल को प्रोत्साहन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत एशिया पावर सूचकांक में जापान को पीछे छोड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बना। और मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में शनिवार तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक 36.93% मतदान दर्ज किया गया। केंद्र शासित प्रदेश के 6 जिलों में 26 विधानसभा क्षेत्रों के सभी 3,502 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। इस चरण में लगभग 25,78,000 मतदाता 239 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू मतदान के व्यापक प्रबंध किए हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 18 सितंबर को पहले चरण में 61% से अधिक मतदान हुआ। तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से वोट डालने और लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं को बधाई दी। इस बीच 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिकों का उच्चस्तरीय शिष्टमंडल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के निरीक्षण के लिए आज कश्मीर का दौरा कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि शिष्टमंडल में अमरीका, मैक्सिको, गयाना, दक्षिण कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया और फिलीपींस के राजनयिक शामिल हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर है। विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारक आज प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के गोहना में 22 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के पक्ष में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार के अंतर्गत हरियाणा ने उद्योग और कृषि जैसे क्षेत्रों में शीर्ष राज्यों में अपनी जगह बनाई है।
साथियों, हरियाणा की भाजपा सरकार ने किसानों से 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का फैसला लिया, लेकिन जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो एमएसपी पर फसलें खरीदने से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। यही कांग्रेस की सच्चाई है जो हरियाणा के किसान को पूरी तरह कांग्रेस को पहचान लेना जरूरी है। साथियों, भाजपा सरकार निरंतर किसान हक में बड़े फैसले ले रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में विश्व में भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है। पूरी दुनिया में यह विश्वास है कि भारत भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से मुक्त है और तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया को लगता है कि आने वाले समय में यदि कोई देश सबसे तेजी से प्रगति करेगा तो वो भारत है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करने को उत्सुक हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कुरुक्षेत्र में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने के लिए लोगों से अपील की। एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को न केवल अन्न उत्पादक बल्कि जैव ईंधन का उत्पादक भी बनाना चाहती है। उधर इंडियन नेशनल लोकदल ने आज पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर जींद जिले के जुलाना में जननायक सम्मान रैली का आयोजन किया। इस रैली को पार्टी के नेताओं के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल भी संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आज महम में एक रैली को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि भाजपा राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड जेडीयू और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू के साथ लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का फार्मूला अंतिम चरण में है और अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसकी घोषणा कर दी जाएगी।
हम लोग चुनाव के लिए तैयारी लगभग कंप्लीट कर चुका हूं। आसू से भी हमारा बात लगभग हो चुका है। जनता दल यू भी हमारा साथ में रहेगा। मेरा मानना है कि हम लोग फास्ट वीक में ही पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा और जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार हमें परिवर्तन करना है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार की प्रमुख पहल मेक इन इंडिया को आज 10 साल पूरे हो गए हैं। इस अवधि के दौरान सरकार ने कई प्रमुख योजनाएं लागू की हैं। इन कार्यों से भारत के विनिर्माण परिदृश्य में क्रांति आई है और हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है।
मेक इन इंडिया पहल ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नई ताकत दी है। अंतरिक्ष से लेकर सेमीकंडक्टर तक और इलेक्ट्रॉनिक से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक मेक इन इंडिया की कामयाबी दिखाई दे रही है। इस पहल का ही नतीजा है कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। इससे मोबाइल फोन के आयात में लगभग 85% की गिरावट आई है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं ने अलग अलग सेक्टरों में 1,28,000 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश को मुमकिन बनाया है। पिछले एक दशक में भारत ने हर घंटे एक स्टार्टअप शुरू किया है, जिससे लगभग 15 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। वहीं आधुनिक सुविधाओं से लैस भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत यात्रियों को बेहतरीन अनुभव दे रही है। वहीं यूपीआई की सफलता ने भारत को डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में अग्रणी देश बना दिया है। पल्लवी परमार के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मेक इन इंडिया भारत को विनिर्माण और नवाचार शक्ति केंद्र बनाने के 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प का उदाहरण है। उन्होंने पिछले एक दशक में इस आंदोलन को सफल बनाने के अथक प्रयास कर रहे सभी लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने हर संभव माध्यम से मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सुधारों के लिए प्रयास जारी रहेंगे और साथ मिलकर हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करेंगे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आशा व्यक्त की है कि वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति आगामी शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। उन्होंने बताया कि समिति को अब तक 1 करोड़ से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियों पर मीडिया को जानकारी देते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि अभी व्यापक विचार विमर्श चल रहा है और समिति विभिन्न सरकारी तथा सामाजिक संगठनों से विचार और सुझाव ले रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल में पहले भी संशोधन होते रहे, लेकिन इस बार व्यापक स्तर पर विचार विमर्श हो रहा है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा है। भारत एशिया पावर सूचकांक में जापान को पीछे छोड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कोविड के बाद भारत ने आर्थिक विकास की अपनी क्षमता में 4.2 अंक की वृद्धि हासिल की है। एक रिपोर्ट।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ने भविष्य के संसाधनों के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। सूचकांक में भारत का कूटनीतिक प्रभाव भी बढ़ा है। वर्ष 2023 में भारत ने सूचकांक में शामिल देशों के साथ छठे सबसे अधिक संवाद में भाग लेकर अपनी राजनयिक गतिविधियों को बढ़ाया है। सूचकांक 27 देशों और क्षेत्रों को उनके बाहरी वातावरण को आकार देने की क्षमता के आधार पर स्थान प्रदान करता है। इसका दायरा पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में रूस और प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमरीका तक है। समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह।
वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि भारत वर्ष 2030 तक सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित इस कंपनी के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में भारत की आय वृद्धि स्थिर हुई है। मजबूत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और सकारात्मक निवेश के कारण लाभ वृद्धि की गति 2030 तक स्थिर रह सकती है। कंपनी ने यह भी कहा कि निफ्टी की कुल आय वृद्धि और मार्केट कैप ने पिछले 5 वर्षों में 18% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर हासिल की है। इस बीच मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.1% की गति से बढ़ने का अनुमान है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने भी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे सत्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास में काफी बढ़ोतरी हुई है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री मांझी ने देश में इस क्षेत्र के लिए किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वियतनाम इस आयोजन का साझेदार देश है। 5 दिन के इस कार्यक्रम में 70 देशों के 350 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत वर्ष 2030 तक एचआईवी और एड्स को समाप्त करने के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में पुनरुद्धार, बहुपक्षवाद, क्षय रोग को एक साथ समाप्त करने के लिए पुनः प्रतिबद्धता पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने एंटी रेट्रोवायरल दवाओं में सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। भारत इस श्रेणी में 70% से अधिक वैश्विक दवाओं की आपूर्तिकर्ता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में शनिवार तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। कर्नाटक के तटवर्ती और भीतरी हिस्सों तथा विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के हिमालयवर्ती इलाकों और सिक्किम में कल तक कहीं तेज तो कहीं बहुत तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा से लगी बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर पश्चिमी खाड़ी के ऊपर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट में कहा कि महान राष्ट्रवादी विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय अवधारणा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
दीनदयाल जी के विचारों की सबसे बड़ी खूबी यही रही, उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उथल पुथल को देखा था। वो विचारधाराओं के संघर्षों के साक्षी बने, इसलिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय का एक विचार देश के सामने रखा। वो कहते भी थे, हमारी आजादी तभी सार्थक हो सकती है जब वो हमारी संस्कृति और पहचान की अभिव्यक्ति करे। इसी विचार के आधार पर उन्होंने देश के विकास का विजन निर्मित किया। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति होता है।
गृहमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को महान देशभक्त, राजनीतिक और मानवता के प्रति समर्पित नेता बताया। श्री अमित शाह ने कहा कि अंत्योदय की उनकी अवधारणा ने सामाजिक एकता को सुदृढ़ किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को नया आर्थिक दर्शन दिया। राजनीति में शुचिता और प्रामाणिकता भी उन्होंने स्थापित की। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार और उनका पूरा जीवन हरेक के लिए प्रेरणा स्रोत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगाह किया है कि न्यायाधीशों को ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए जो मिथ्यापूर्ण और किसी भी समुदाय के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड, न्यायाधीश संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और ऋषिकेश रॉय की पीठ स्वतः संज्ञान लेते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान की गई विवादास्पद टिप्पणियों के वायरल क्लिपिंग से जुड़े मुद्दे की सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने न्यायाधीशों द्वारा संयम बरतने की आवश्यकता पर बल दिया, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में जब अदालत की कार्रवाई की व्यापक रिपोर्टिंग होती है तो न्यायालय ने किसी भी समुदाय या जाति विशेष के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर असहमति व्यक्त की। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने आज झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। रांची के राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने न्यायमूर्ति राव को पद की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और कई न्यायाधीश भी शामिल हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 1 बजे तक 36.93% मतदान रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार में आई तेजी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोनीपत जिले के गोहना में जनसभा की। मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री ने योजना की सराहना करते हुए हर संभव माध्यम से इस पहल को प्रोत्साहन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत एशिया पावर सूचकांक में जापान को पीछे छोड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बना और मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में शनिवार तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।